एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने जब से वो आई है दुनिया भर में काफी सनसनी मचाई है।
प्रिंस हैरी ड्यूक ऑफ ससेक्स की आत्मकथा स्पेयर।
जी हाँ, जनवरी 2023 में आई और आते ही जैसे धमाका हो गया। इसने ब्रिटिश शाही परिवार की जो अंदरूनी दुनिया है उस पर एक बिल्कुल अलग और हाँ काफी विवादास्पद नजरिया पेश किया।
सही कहा, और ये सिर्फ एक राजकुमार की कहानी नहीं लगती है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये एक व्यक्ति का जो दशकों से मीडिया की नजरों में रहा है, अपनी कहानी अपने शब्दों में बताने का एक प्रयास है। और स्पेयर में हैरी अपने अनुभव, अपने संघर्ष, अपनी भावनाएं काफी खुलकर सामने रखते हैं।
और किताब का नाम ही स्पेयर, अतिरिक्त, फालतू।
हाँ, वो कहते हैं कि उन्हें इसी तरह पाला गया है। मतलब सिंहासन के उत्तराधिकारी उनके बड़े भाई विलियम उनके लिए बस एक बैकअप। तो ये कहानी सिर्फ महलों की नहीं है, इसमें गहरा दुख है, ब्रिटिश टैब्लॉइड्स के साथ एक बहुत कड़वा संघर्ष है और एक पुरानी संस्था की जकड़ों से बाहर निकलकर प्यार, उद्देश्य, शांति, इनकी तलाश है।
बिल्कुल, और आज ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये मुद्दे सिर्फ शाही परिवार तक ही सीमित नहीं है, है ना? ट्रॉमा से उभरना, परिवार के अंदर की बातें, संस्थाओं का दबाव, अपनी पहचान खोजना, ये सब ऐसी चीजें हैं जिनसे शायद सुनने वाले भी कहीं ना कहीं जुड़ पाएंगे।
हाँ, ये बात तो है। किताब हैरी के जीवन को मोटे तौर पर तीन हिस्सों में बांटती है और शुरुआत होती है उस एक घटना से जिसने सब कुछ बदल दिया, उनकी माँ प्रिंसेस डायना की मृत्यु। तो चलिए जरा इस यात्रा को समझने की कोशिश करते हैं किताब के जरिए।
जी, तो बचपन बीता कैंसिंगटन पैलेस, हाई ग्रोव, बालमोरल जैसी जगहों पे, और शुरू से ही वो शरारती छोटे भाई थे। उनके बड़े भाई विलियम, जो उत्तराधिकारी थे, उनसे काफी अलग।
और किताब में वो एक बात लिखते हैं अपने जन्म के दिन की कि उनके पिता प्रिंस चार्ल्स ने मजाक में कहा था, वंडरफुल, नाउ यू've गिवन मी एन एयर एंड अ स्पेयर, माय वर्क इज डन। मतलब उत्तराधिकारी और एक अतिरिक्त।
हाँ, और ये स्पेयर शब्द जैसे उनकी पहचान का हिस्सा बन गया, अनजाने में ही सही।
पर सबसे बड़ा मोड़ जाहिर है अगस्त 1997 में आया, प्रिंसेस डायना की पेरिस में कार दुर्घटना में मौत।
वो बताते हैं कि कैसे उनके पिता ने बालमोरल में उन्हें ये खबर दी और वो बिल्कुल सुन्न हो गए थे, शॉक में। सालों तक उन्हें ये लगता रहा कि शायद माँ कहीं छिप गई हैं प्रेस से बचने के लिए, अपनी मौत का नाटक किया है।
सोचकर भी अजीब लगता है, 12 साल का बच्चा पूरी दुनिया के सामने माँ के ताबूत के पीछे चल रहा है और उसके बाद एक गहरा भावनात्मक खालीपन।
बिल्कुल, और यहीं से वो पेपराजी के लिए एक तीव्र नफरत वो उनके मन में बैठ गई। वो उन्हें ही अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार मानते थे और ये दुख, ये अनसुलझा दुख उनके जीवन में हमेशा साथ रहा।
फिर स्कूलिंग की बात आती है, ईटन कॉलेज, वहां भी उन्हें दिक्कतें आईं, पढ़ाई में भी, घुलने मिलने में भी, अकेलापन महसूस करते थे।
हाँ, और इसी दौर पे मीडिया ने वो पार्टी प्रिंस वाली छवि बनानी शुरू की जिसे वो मानते हैं किताब में कि कुछ हद तक उन्होंने निभाया भी। शायद वो उनके अंदर जो चल रहा था उस दुख से भागने का एक तरीका था।
और इसी दौरान कुछ गलतियां भी हुईं जो पब्लिक में बहुत उछलीं, जैसे वो 2005 वाली घटना, कॉस्ट्यूम पार्टी में नाजी वर्दी पहनना।
जी, वो उसे अपनी सबसे बड़ी गलतियों में गिनते हैं। कहते हैं कि अपरिपक्वता थी। बाद में उन्होंने प्रायश्चित भी किया, मुख्य रब्बी से मिले, ऑशविट्स गए। कुछ लोग कहते हैं विलियम और केट ने भी वो ड्रेस चुनने में मदद की थी, पर हैरी किताब में पूरी जिम्मेदारी खुद लेते हैं।
फिर वो लास वेगास वाली घटना, स्ट्रिप बिलियर्ड्स खेलते हुए तस्वीरें।
हाँ, वो भी प्रेस ने खूब उछाला। हैरी कहते हैं कि ये उनकी जवानी की नासमझियां थी, अंदरूनी कश्मकश थी जिसका मीडिया ने उनके हिसाब से पूरा फायदा उठाया।
शायद इन सबसे निकलने का एक रास्ता उन्हें सेना में मिला।
बिल्कुल,
ब्रिटिश आर्मी।
हाँ, लगता तो यही है। 10 साल सेना में, सैंडहर्स्ट में ट्रेनिंग, फिर अफगानिस्तान में तैनाती, कैप्टन वेल्स के नाम से।
जी,
वो लिखते हैं कि शायद ये उनकी जिंदगी का अकेला ऐसा वक्त था जब उन्हें नॉर्मल महसूस हुआ,
जहां आपका टाइटल नहीं,
बिल्कुल,
आपका काम, आपकी काबिलियत देखी जाती है।
अफगानिस्तान में 2 दौरे किए उन्होंने।
जी, 2007-08 में फॉरवर्ड एयर कंट्रोलर के तौर पर, फिर 2012-13 में अपाचे हेलीकॉप्टर पायलट और गनर। वहां उन्हें एक मकसद मिला, अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिला। उन्होंने किताब में लिखा भी कि उन्होंने 25 तालिबान लड़ाकों को मारा। इस पर काफी विवाद हुआ। पर वो इसे युद्ध की सच्चाई बताते हैं।
और दिलचस्प ये भी है कि उनका पहला दौरा बीच में ही खत्म करना पड़ा क्योंकि प्रेस में खबर लीक हो गई थी।
हाँ, जिससे उनकी और यूनिट की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी।
ये फिर से दिखाता है कि प्रेस के साथ उनका रिश्ता कितना तनाव भरा रहा है।
सेना छोड़ने के बाद भी सैनिकों से उनका जुड़ाव बना रहा।
बिल्कुल।
इनविक्टस गेम्स।
बिल्कुल। 2014 में शुरू किया, जो घायल बीमार सैनिक हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल, ये उनका पहला बड़ा इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट था और काफी सफल भी रहा। इसने दिखाया कि वो सिर्फ राजकुमार नहीं है, कुछ और भी हैं।
और फिर आया 2016, एक नया मोड़, मेगन मार्कल।
हाँ, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अमेरिकी अभिनेत्री मेगन मार्कल से मुलाकात, तेजी से रोमांस बढ़ा, पर साथ ही मीडिया का एक ऐसा तूफान उठा जो शायद पहले कभी नहीं देखा गया था।
और हैरी इस बारे में बहुत मुखर है। वो कहते हैं कि ब्रिटिश टैब्लॉइड्स का मेगन के प्रति रवैया शुरू से ही खराब था, न सिर्फ आक्रामक बल्कि उसमें नस्लवाद और स्त्री द्वेष भी था।
जी, और उन्हें इसमें अपनी माँ डायना के साथ जो हुआ उसकी भयानक झलक दिखने लगी। वो किताब में दी इंस्टीट्यूशन, मतलब शाही व्यवस्था, दरबारी, सलाहकार, प्रेस ऑफिस, इन सब पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने मेगन को बचाने के लिए कुछ नहीं किया।
और इसी दौर में भाई विलियम के साथ रिश्ते भी बिगड़ते चले गए
बहुत ज्यादा। किताब में 2019 की एक घटना का जिक्र है, बहुत चौंकाने वाला। हैरी लिखते हैं कि मेगन को लेकर बहस हुई और विलियम इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने हैरी का कॉलर पकड़ा, उनका नेकलेस तोड़ दिया और उन्हें धक्का दिया। हैरी रसोई के फर्श पर कुत्ते के कटोरे पर जा गिरे, पीठ में चोटें आईं।
ये तो बहुत दुखद है, भाइयों के बीच ऐसा।
हाँ, और इसे वो भाई के साथ रिश्ते के पूरी तरह टूटने का एक प्रतीक मानते हैं।
इन्हीं सबके बाद फिर वो बड़ा फैसला आया, जनवरी 2020 में शाही परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की भूमिका से पीछे हटना, मैग्जिट।
जी, और हैरी जोर देकर कहते हैं कि ये परिवार या रानी का अपमान नहीं था, ये आत्मरक्षा थी। अपनी पत्नी और बेटे आर्ची को उन्हीं ताकतों से बचाने की कोशिश थी जिन्हें वो अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार मानते थे।
फिर वो कैलिफोर्निया चले गए, एक नया जीवन शुरू किया।
हाँ, एक ऐसा अध्याय जो जन्म के अधिकारों से नहीं बल्कि उनकी अपनी पसंद से लिखा जा रहा है। उन्होंने मेगन के साथ मिलकर आर्ची वेल फाउंडेशन बनाया है, जो उनके आगे के काम का केंद्र है। ऑनलाइन गलत जानकारी, मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर काम करने की बात करते हैं।
तो इस पूरी यात्रा को देखें, उनकी बातों को सुने, तो उनके जीवन का दर्शन, उनके मूल्य क्या समझ आते हैं?
अच्छा सवाल है। देखिए, किताब से ये साफ लगता है कि हैरी के लिए व्यक्तिगत भलाई, मानसिक स्वास्थ्य और सच्चे रिश्ते, ये परंपरागत शाही कर्तव्य और परंपराओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उनकी सोच पर उनकी माँ को खोने का जो दुख है, जो ट्रॉमा है, उसका बहुत गहरा असर है। वो मानते हैं कि अगर दुख को समझा ना जाए तो वो जिंदगियों और परिवारों को तबाह कर सकता है।
और वो सेवा को भी शायद अलग तरह से देखते हैं।
बिल्कुल। उनके लिए सेवा वो है जो सीधी हो, व्यवहारिक हो, जिसमें सहानुभूति हो। जैसे इन्विक्टस गेम्स, सिर्फ प्रतीकात्मक शाही भूमिकाएं निभाने से ज्यादा शायद उन्हें इसमें संतुष्टि मिलती है। कर्म का महत्व पदवी से ज्यादा है, ऐसा लगता है।
और वो प्रेस और राजशाही के रिश्ते पर भी काफी कुछ कहते हैं, अदृश्य अनुबंध।
हाँ, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट उनकी किताब का। वो कहते हैं कि ये एक जहरीला सहनिर्भर रिश्ता है, एक अलिखित समझौता जहां शाही सदस्य प्रेस को अपने जीवन में थोड़ी पहुंच देते हैं, बदले में प्रेस उन्हें अच्छा दिखाता है। हैरी का तर्क है कि ये सिस्टम खराब है, इसमें लोगों की प्राइवेसी, उनकी गरिमा, उनके मानसिक स्वास्थ्य का सौदा होता है।
तो उनका तरीका अब चुप रहने का नहीं बल्कि सामना करने का है।
जी, थेरेपी से अपने दुख का सामना करना, कानूनी लड़ाई से प्रेस का सामना करना और अपनी कहानी बताकर शायद सिस्टम और परिवार के कुछ लोगों का भी सामना करना। ये उस पुराने शाही नियम नेवर कंप्लेन नेवर एक्सप्लेन से बिल्कुल उलट है।
और इन सब के पीछे की मूल वजह क्या लगती है? डर।
हाँ, मुझे लगता है डर एक बहुत बड़ी वजह है, खासकर ये डर कि इतिहास दोहराया ना जाए, कि मेगन के साथ वैसा ना हो जैसा उनकी माँ के साथ हुआ। अपनी पत्नी और बच्चों की सुरक्षा, ये उनका सबसे बड़ा लक्ष्य नजर आता है।
और अपना सच कहने की इच्छा।
हाँ, वो भी। दशकों तक दूसरों ने उनकी कहानी बताई, तोड़ी मरोड़ी, तो स्पेयर एक तरह से रिकॉर्ड को सीधा करने की कोशिश है, ये बताने की कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया, अपनी आवाज वापस पाने की कोशिश।
और मुश्किलों से निपटने का उनका तरीका भी बदला है वक्त के साथ।
बहुत ज्यादा। पहले वो शायद आवेग में रिएक्ट करते थे, शराब, पार्टी, फिर सेना ने अनुशासन सिखाया और अब मेगन के आने और थेरेपी के बाद वो ज्यादा सोच समझकर सक्रिय रूप से कदम उठाते हैं, चाहे वो आवाज उठाना हो, कानूनी रास्ता अपनाना हो या फिर उस माहौल से ही दूर हो जाना हो जिसे वो खराब मानते हैं।
तो अगर तीन सबसे अहम मोड़ चुनने हों हैरी के जीवन में जिन्होंने सब कुछ बदल दिया।
मेरे हिसाब से पहला तो जाहिर है प्रिंसेस डायना की मृत्यु 1997। ये वो मूल आघात है जिसने सब कुछ तय किया, माँ का जाना और साथ ही प्रेस का एक विलेन के रूप में स्थापित हो जाना, मीडिया पर गहरा अविश्वास और एक जरूरत से ज्यादा सुरक्षात्मक रवैया, ये सब वहीं से शुरू हुआ।
बिल्कुल, ये किताब की नींव है एक तरह से।
दूसरा मैं कहूंगा अफगानिस्तान में उनकी सैन्य सेवा 2007 से 2013। पहली बार उन्हें उनकी पदवी से नहीं उनके काम से पहचाना गया, उन्हें मकसद मिला, बराबरी का एहसास हुआ, एक नॉर्मल जीवन की झलक मिली।
हाँ, कैप्टन वेल्स वाली पहचान बनी, आत्मविश्वास आया और इनविक्टस गेम्स जैसा काम भी इसी से जुड़ा है।
और तीसरा और शायद सबसे नाटकीय, मेगन मार्कल से मिलना और शादी 2016 के बाद। मेगन सिर्फ एक पार्टनर नहीं थी, वो एक अलग दुनिया, एक अलग जीवन की संभावना थी, और इसी रिश्ते ने हैरी के अंदर के द्वंद्व को व्यक्तिगत खुशी बनाम संस्थागत जिम्मेदारी उसे चरम पर पहुंचा दिया।
और मेगन पर जो मीडिया हमले हुए उसने उनकी माँ वाली यादें ताज़ा कर दी।
बिल्कुल, और वहीं से शायद वो रास्ता तय हो गया कि उन्हें अपने बनाए परिवार को चुनना है अपनी विरासत में मिली भूमिकाओं के ऊपर। ये उनका सबसे बड़ा विद्रोह कहा जा सकता है।
इस कहानी में जो बहुत खास है उसमें भी कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सबके लिए है ना, मानवीय सबक।
हाँ बिल्कुल, सबसे पहली बात तो यही कि बचपन का अनसुलझा दुख, ट्रॉमा किसी की पूरी जिंदगी पर कैसे असर डाल सकता है अगर उसे सही वक्त पर समझाना जाए, उसका सामना न किया जाए।
और ये कि पहचान सिर्फ मिलती नहीं, बनानी पड़ती है। हैरी को असली सुकून तब मिला जब उन्होंने स्पेयर वाली पहचान से आगे बढ़कर अपनी पहचान बनाई, सैनिक, पति, पिता, इनविक्टस गेम्स के संस्थापक।
एक और बात ये कि आप चुन सकते हैं कि आपके लिए ज्यादा जरूरी क्या है, किस परिवार को आप प्राथमिकता देते हैं। हैरी ने वो परिवार चुना जो उन्होंने बनाया, भले ही दुनिया के सबसे मशहूर परिवारों में से एक में उनका जन्म हुआ था।
और वो चुप्पी वाली बात, नेवर कंप्लेन नेवर एक्सप्लेन, ये हमेशा काम नहीं करता।
सही का, किताब दिखाती है कि ये कैसे अंदर ही अंदर घुटन पैदा कर सकता है। कभी कभी अपना सच बोलना चाहे कितना भी मुश्किल हो बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक होने के लिए और शायद जिंदा रहने के लिए भी।
अंत में ये वही कहानी है, कर्तव्य और इच्छा के बीच का संघर्ष, जो जीवन मिला है और जो जीवन आप चुनते हैं।
जी, और ये मानसिक स्वास्थ्य, मीडिया एथिक्स, नस्लवाद जैसे आज के मुद्दों से भी गहराई से जुड़ती है।
तो इस पूरी चर्चा से, स्पेयर से, हम क्या तीन मुख्य बातें लेके जा सकते हैं श्रोताओं के लिए, तीन खास टेकअवेज?
पहली एक भावनात्मक बात, वो 12 साल का बच्चा जो माँ के ताबूत के पीछे दुनिया के सामने चला, उसका वो अनकहा अनसुलझा दुख, वो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। ये दिखाता है कि बचपन का आघात कितना गहरा हो सकता है और उसे समझना, उस पर काम करना कितना जरूरी है।
दूसरी एक बौद्धिक बात,
वो है राजशाही और टैबलॉइड प्रेस के बीच का वो अदृश्य अनुबंध। ये किताब उसका एक अंदरूनी और काफी तीखा विश्लेषण है। ये दिखाती है कि कैसे संस्थाएं, सिस्टम व्यक्तियों के ऊपर हावी हो सकते हैं, कैसे छवि और मुनाफे के लिए व्यक्तिगत भलाई को अनदेखा किया जा सकता है।
और तीसरी एक सार्वभौमिक बात जो हम सब पर लागू हो,
शायद सबसे व्यवहारिक सबक ये है कि अपनी सच्चाई, अपने मानसिक स्वास्थ्य, अपने चुने हुए लोगों को बाहरी उम्मीदों या विरासत में मिली भूमिकाओं से ऊपर रखना संभव है, भले इसकी कीमत चुकानी पड़े। सच्ची आज़ादी और सुकून के लिए कई बार हिम्मत चाहिए होती है, त्याग करना पड़ता है, और जो है जैसा है उसे चुनौती देनी पड़ती है। ये आसान नहीं है पर यह मुमकिन है।
तो ये थी प्रिंस हैरी की कहानी स्पेयर के जरिए, एक कहानी जो सोचने पर मजबूर करती है प्रसिद्धि, परिवार, कर्तव्य और अपनी राह चुनने की कीमत पर। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।